اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 1، پیج نمبر 13، حج بیت اللہ۔ مکہ مکرمہ میں عربک اینڈ اسلامک تحقیقاتی کمیٹی کی پہلی منعقد ہونے والی کانفرنس میں بطور مندوب شرکت کرنے کے لیے ٹیونس کی قومی تحقیقاتی کمیٹی نے جمہوریہ ٹیونیسیا کے ان 6 شخصوں کے ساتھ میرے نام کی بھی منظوری دے دی جو مکہ کانفرنس میں بحیثیت نمائندہ شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت میری عمر صرف 16 سال کی تھی، اس لیے میں پورے وفد میں اپنے کو سب سے چھوٹا اور معمولی ثقافت والا سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس وفد کے ممبروں میں 2 تو مدارس کے مدبر تھے، تیسرا دارالسلطنت میں استاد تھا، چوتھا صحافی تھا، البتہ 5ویں کا نام تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت کے وزیر تربیت کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا۔ ہمارا سفر غیر مستقیم تھا۔ قفصہ سے روانہ ہو کر پہلے تو ہم یونان کے دارالسلطنت اسنیا پہنچے۔ 3 دن تک ہمارا وہاں قیام رہا۔ وہاں سے عمان حکومت اردن کا دارالسلطنت جو ہے وہاں پہنچے۔ یہاں ہم نے 4 دن تک قیام کیا۔ وہاں سے ہم سعودیہ پہنچے، جہاں ہم کانفرنس میں شرکت کے ساتھ تناسک حج و عمرہ بھی بجا لائے۔ گویا ہم خرمہ ہم ثواب ہوئے۔ بیت اللہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہوئے میرا شعور ناقابل تصور تھا۔ دل کی دھڑکنوں کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہڈیوں کو توڑ کر دل اس بیت عتیق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے جس کا مدتوں سے خواب دیکھتا رہا تھا۔ آنسوؤں کا وہ سیلاب امڈا ہوا تھا جس کے رکنے کا تو سوال ہی نہیں۔ میں اپنے وجود کو اس میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اپنی قوت متخیلہ کا اسیر تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ جیسا ملائکہ مجھے اٹھائے حاجیوں کے اوپر سے کعبے کی چھت پر لے گئے اور وہاں پہنچ کر میں تلبیہ پڑھ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ حجاج کرام کا تلبیہ سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان بیچاروں نے اپنی عمریں گزار دیں، حج کی تیاری کرتے رہے، اسباب اکٹھا کرتے رہے، مال جمع کرتے رہے، تب کہیں یہاں پہنچے، لیکن میں تو بغیر کسی تیاری کے دفتن یہاں آ گیا۔ مجھے اپنے بابا یاد آ رہے تھے کہ جب انہوں نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیکھا اور میرے سفر حج کا یقین ہو گیا تو مجھے لپٹا لپٹا کر روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے بیٹا، تم کو مبارک ہو، مشیت الہی یہی تھی کہ تم اس کمسینی میں حج سے شرف یاب ہو، تم سیدی احمد التجانی کے بیٹے ہو، بیت اللہ میں میرے لیے دعا کرنا کہ خدا میری توبہ قبول کر لے اور مجھے بھی حج کی توفیق دے۔ اسی لیے مجھے گمان ہوا کہ رب کعبہ نے مجھے آواز دی ہے اور اس کی مخصوص عنایت نے مجھے اپنے دامن میں پناہ دی ہے اور اس مقام تک مجھے پہنچا دیا جہاں تک پہنچنے کی حسرت و تمنا میں ان گنت لوگ موت کی آغوش میں سر رکھ کر ابدی نیند سو گئے ہیں۔ لہٰذا بھلا مجھ سے زیادہ تلبیہ کہنے کا حق کس کو ہے؟ میرے والہانہ پن کا عالم یہ تھا کہ نماز و طواف و سعی میں دل و جان سے مشغول ہونے کے ساتھ بے تحاشا آب زمزم بھی پی رہا تھا۔ جبل نور و جبل رحمت کی طرف پہنچنے میں لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح جبل نور پر جو غار ہیرا ہے اس کے لیے بھی یہی کوشش تھی۔ چنانچہ عشق الہی میں سرشار میں بھی پہنچا اور صرف ایک سوڈانی جوان کے علاوہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا۔ پہنچتے ہی میں لوٹنے لگا اور اس طرح جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لوٹ رہا ہوں اور ان کے انفاس قدسیہ کا استشمام کر رہا ہوں۔ ہائے وہ تصورات اور وہ یادیں جنہوں نے میرے دل و دماغ پر اتنا گہرا اثر چھوڑا ہے جس کا محف ہونا نقوش ہجری کے مٹ جانے سے زیادہ مشکل ہے۔ خدا کا ایک خاص کرم یہ بھی تھا کہ وفود کے تمام لوگ جو مجھ سے ملتے تھے محبت کرنے لگتے تھے اور خط و کتابت کے لیے میرا پتہ مجھ سے لکھ لیتے تھے، بلکہ خود میرے بوئسا کے لوگ، بوئسا یعنی عربی میں اس کو کہتے ہیں جو لوگ حکومت کی طرف سے وفد کی شکل میں کہیں بھیجے جائیں، بوئسا کے لوگ جب تربیت سفر کے لیے ٹیونس کے دارالسلطنت میں پہلی مرتبہ ملے تھے تو مجھے ذلیل نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں نے اس بات کو تاڑ لیا تھا لیکن چپ سادھ لی تھی، کیونکہ مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ شمال والے जुनूब वालों को हिकारत की नज़र से देखते हैं और इनको बहुत पसमानदा ख्याल करते हैं, मगर असनाए सफ़र, कॉन्फ्रेंस और हज में इनके नज़रियात काफ़ी बदल गए थे और अब वो लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि इस्लामी दुनिया से आए हुए मुख्तलिफ वफूद के सामने मैंने इनके चेहरे रोशन कर दिए थे। अपने हाफ़ज़े के भरोसे पर याद किए हुए अशार, कसाइद और मुख्तलिफ मुकाबलों में जीते हुए मेरे इनामात ने ट्यूनिसी वफ्द की इज़्ज़त बचा ली थी। सऊदीया में हमारे क़याम की मुद्दत 25 दिन थी और इन दिनों में हम उलमा से मिलते रहे, इनकी तकरीरें सुनते रहे और मैं बज़ाते ख़ुद बाज़ वहाबी अक़ीदों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका था और ये मेरी दिली आरज़ू थी कि काश सारे मुसलमान वहाबी होते। इस मुख्तसर सी मुद्दत में मैंने ये बावर कर लिया था कि खुदावंदे आलम ने बैतुल हराम की हिफाजत के लिए इसी फ़िरक़े को मुंतखब किया है, इसलिए ये लोग सबसे ज़्यादा आलिम, सबसे ज़्यादा पाक व पाकीज़ा हैं। रूए अर्ज़ पर इनका कोई मिसल व नज़ीर नहीं है। खुदा ने इनको सयाल सोना देकर मालदार बना दिया है ताकि ये लोग ज़ैयूफ़ुर रहमान यानी हज्जाज कराम की खिदमत कर सकें। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद जब मैं सऊदी लिबास पहने हुए, सर पर अकाल बांधे हुए अपने वतन मालूफ पहुँचा तो मेरा बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबाल का अहतमाम खुद अब्बा जानी ने किया था। पूरा स्टेशन लो खोए से खोआ छल रहा था। मजमे के आगे आगे ढोलो दफ लिए हुए अल तरीक़ातुल अयादिया के शेख और शेखुल तिजानिया शेखुल कादरिया थे। फिर ये मजमा मुझे अपने साथ लेकर शहर की सड़कों पर नारे तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाता हुआ चला। जब किसी मस्जिद से ये मजमा गुज़रता था तो थोड़ी देर के लिए इसके दरवाजे पर मुझे खड़ा कर दिया जाता था और चारों तरफ से लोग मुझे बोसा देने के लिए टूट पड़ते थे। खुसूसन बुढ़े तो मुझे चूमते थे और बैतुल्लाह की ज़ियारत और कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वकूफ़ के शौक़ में डाढ़े मार मार कर रोते थे। इन हजरात ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना कम सिन हाजी, ना कफ्सा ना गैर कफ्सा कहीं भी नहीं देखा था। इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी के सईद तरीन अय्याम गुजार रहा था। शहर के शरीफ और बड़े लोग हमारे घर मुबारकबादी, सलामो दुआ के लिए आते थे। बहुत से खुश अकीदा हजरात मेरे वालिद की मौजूदगी में मुझसे दुआ करने और फातिहा पढ़ने की ख्वाहिश भी कर देते थे, जिससे कभी तो मुझे शर्मिंदगी होती थी और कभी मेरी हिम्मत बढ़ती थी। और मेरी वालदा मरहूमा का आलम यह था कि जब भी ज़ायरीन घर से जाते थे वो फ़ौरन हासिदों के शर से बचाने वाले और शैतीन के कैद को दूर करने वाले तावीज़ात मेरे गले में डाल देती थी और बखूरात जला देती थी ताकि मैं हर किस्म के शर से महफूज रहूं। अल्लाह रे माँ की मोहब्बत। अब्बा जानी जन्नत मकानी मुसलसल 3 रातों तक मज़ारात तिजानिया पर चढ़ावे चढ़ाते रहे और रोज़ाना एक दुम्बा ज़िबा करके लोगों को खिलाते थे। और लोगों का आलम यह था कि छोटी से छोटी बातों के बारे में बड़ी दिलचस्पी से सवाल करते थे और मैं ज़्यादातर सऊदियों की तारीफ़ में रद्दुल लिसान रहता था और बताता था कि इन लोगों ने नशरो इस्लाम और मुसलमानों की नुसरत व हिमायत के लिए क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। शहर वालों ने मेरा लकब अलहाज रख दिया था। जब भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था फ़ौरन लोगों के जहनों में मेरा तसव्वुर उभरता था। इसके बाद तो मेरी शोहरत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, मखसूसन दीनी कमेटियों वगैरह में जैसे अख़वानुल मुस्लिमीन और इसी किस्म की दीगर जमातें हैं। और फिर मेरा ये वतीरा हो गया कि कूचा कूचा, गलियों गलियों, खुसूसन मस्जिदों में जाकर ज़रीह का बोसा देने, लकड़ियों को चूमने से लोगों को रोकने लगा और अपनी सारी कोशिश इस बात पर सर्फ करता था कि लोगों को काने कर दूँ कि ये बातें शिर्क हैं। रफ्ता रफ्ता जब इसमें कामयाबी होने लगी तो जुम्मे के दिन इमाम के खुतबे से पहले मस्जिदों में दीनी दुरूस भी कहने लगा और फिर मैं जामे अबी याकूब और जामे कबीर दोनों में वक्तन फवक्तन जाने लगा, क्योंकि नमाज जुम्मा दोनों में होती थी और यकशंबा को जो दुरूस कहता था इसमें इस कॉलेज के लड़के भी बकसरत शरीक होते थे, जिसमें टेक्नोलॉजी और इक्तिसादियात के दर्स कहा करता था। चूँकि मैं उनके जहनों से इन पर्दों को हटा दिया करता था जो मुलहित किस्म के फ़लसफ़ी और मादी और कम्युनिस्ट असातिज़ा डाल दिया करते थे, इसलिए वो मुताज्जिब होने के साथ साथ मेरे एहतराम के कायल हो गए थे और मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। चुनाचा ये तुलाब बड़ी बेचैनी से इन दुरूस का इंतज़ार करते थे और कुछ तो मेरे घर भी आते थे, क्योंकि मैंने ख़ुद भी बाज़ दीनी किताबों को ख़रीद कर बाकायदा मुताला शुरू कर दिया था ताकि मुख्तलिफ पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दे सकूं। जिस साल में हज से मुशर्रफ हुआ था निस दीन, शादी तो हासिल ही कर लिया था क्योंकि वालदा मरहूमा को अपने मरने से पहले मेरी शादी कर देने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। मेरी वालदा ही ने अपने शोहर की तमाम औलाद की तालीम और तरबियत की थी और सबकी धूमधाम से शादी भी रचाई थी, इसलिए इनकी दिली आरजू मेरे भी दूल्हा बनने की थी। चुनाचे खुदा बंदे आलम ने इनकी मुराद पूरी कर दी कि मैंने इनके हुक्म के मुताबिक ऐसी अलहड़ दोशीज़ा से शादी की रजामंदी दे दी जिसको पहले कभी देखा ही नहीं था। खुदा का लाख लाख शुक्र कि मेरे दोनों बड़े बेटों की विलादत भी इनकी ज़िंदगी में हो गई और उन्होंने दुनिया को इस आलम में छोड़ा है कि मुझसे राज़ी थीं, जैसा कि 2 साल कबल अब्बा जानी भी दागे मफारकत दे चुके थे। लेकिन बशरुल हम्द के मरने से 2 साल कबल हज बैतुल्ला से भी मुशर्रफ हो चुके थे। और तौबा व नसूह भी कर चुके थे। इसराइल से शिकस्त खाने के बाद जब मुसलमानों और खुसूसन अरबों के हिस्से में जो ज़िल्लत और रुसवाई आई है और अरब पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए थे कि तूफ़ान की तरह एक जवान कायद इनकलाब बनकर उठा जो सिर्फ़ इस्लाम की बात करता था, लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ाता था और जिसने लीबिया के गले से ग़ुलामी की जंजीरों को काट देने के बाद कुद्स की आज़ादी का नारा दिया था। अरबी और इस्लामी ममालिक के अक्सर नौजवानों की तरह मेरे दिल में भी इस जवान से मुलाकात का शदीद जज्बा था। मजीद इतला की हिरस ने हमको एक सकाफ़ती दौरे पर मजबूर किया कि लीबिया को करीब से जाकर देखें। चुनाचे हमने 40 तालीम याफ्ता और मुस्कफ़ हजरात पर मुश्तमिल एक वफ्त इनकलाब के अदाइल ही में मुनज़्ज़म कर लिया और लीबिया की ज़्यारत के लिए रवाना हो गए। और जब वहाँ से पलटे हैं तो सभी मसरूर खुर्रम थे और सभी के दिलों में उम्मत अरबिया और मुस्लिमा के ताबनाक मुस्तकबिल के चिराग रोशन थे। इन गुज़िश्ता सालों में बाज़ दोस्तों के मोहब्बत भरे खतूत आते रहे जिन्होंने दोस्तों की मुलाकात के शौक़ को तेज़ तर कर दिया और फिर आखिरकार चंद दोस्तों के शदीद इसरार पर जो इस सफ़र में मेरे हमरकाब रहना चाहते थे मैंने रखते सफ़र बांध ही लिया और एक लंबे सफ़र का प्रोग्राम बना डाला जो 3 महीनों के शबो रोज़ पर मुश्तमिल था और तय हो गया कि गर्मियों की छुट्टियां भी नज़र सफ़र कर दी जाएं, इसीलिए 3 माह का सफ़र हो गया। हमारा प्रोग्राम ये था कि खुश्की के रास्ते से लीबिया पहुंचा जाए, वहां से मिस्र, वहां से समंदरी रास्ते से लबनान चला जाए, फिर सोरिया उर्दन होते हुए सऊदीया में पड़ाव डाला जाए। सऊदीया को प्रोग्राम में 2 मकसद की वजह से शामिल किया था, एक तो उम्रा करना मकसूद था और दूसरे वहाबियत से नए अहद पैमान बांधने थे जिसकी मैंने नौजवान तुलबा और मसाजिद में आने वाले मुसलमानों और अखवानुल मुस्लिमीन में भरपूर तरवीज की थी। मेरे शहर से मेरी शोहरत आसपास के दूसरे शहरों तक पहुँचने लगी क्योंकि जब कोई मुसाफिर नमाज जुम्मा में शरीक होता तो मेरे दरूस में भी शिरकत करता था और वापस जाकर लोगों को बताता था। होते होते ये ख़बर आसमतुल जरीद के शहर तोज़र के मशहूर सूफ़ी मसलक के सरबरा शेख इस्माइल हादिफी तक भी पहुंच गई। ये कौज़र के मशहूर शायर अबुल कासिम अल शाबी का मौलिद भी है। शेख इस्माइल हादिफी के मुरीद तमाम ट्यूनस के शहरों में फैले हुए हैं बल्कि ट्यूनस के बाहर फ़्रांस और जर्मनी तक मुंतशिर हैं। अल शेख इस्माइल हादिफी की वो वकला जो शहर कफ्सा में रहते थे उन्होंने मुझे बड़े लंबे चौड़े खतूत लिखे जिनमें मेरे इन मसाई जमीला का शुक्रिया अदा किया गया था जो मैंने इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए अंजाम दिए थे और मुझे ये भी बताया गया था कि इन चीज़ों से ज़र्रा बराबर तकर्रुब इलाही हासिल नहीं हो सकता जब तक ये उमूर किसी शेख आरिफ के तहत नज़र ना हो। नेज़ इनके यहाँ एक मशहूर हदीस है, इसकी तरफ मुझे मुतवज्जा भी किया गया था। हदीस का मफहूम ये है, जिसका कोई शेख व तरीक़त ना हो इसका शेख शैतान होता है। इन्हीं हदूद में मुझे अल शेख इस्माइल हादिफी की ज़्यारत की दावत भी दी गई थी और ये ताकीद की गई थी कि तुम्हारे लिए एक शेख का होना ज़रूरी है वरना तुम्हारे पास का निस्फ इल्म नाक़िस है। मुझे ये भी बशारत दी गई थी कि साहिबुज़मान इन लोगों की मुराद, ब्रैकेट में लिखा है, इन लोगों की मुराद शेख इस्माइल हादिफी से है। ने मुझे तमाम लोगों के दरमियान खासुल खास मुकरार दिया है। इस खुशखबरी से मैं झूम उठा। खुदावंदे आलम की इस मखसूस अनायत पर मेरा दिल भर आया और ख़ुशी के मारे मेरी आँखों ने सावन का समा पेश कर दिया और मेरे दामन ने इन मोतियों को अपने सीने में छुपा लिया, क्योंकि खुदावंदे आलम मुसलसल बुलंद से बुलंद तर मकाम तक मुझे पहुँचा रहा था, क्योंकि मैंने अपने माजी को सैयदुल हादीउल हफियान के नक्शे कदम का पैरू बनाया था, इसलिए कि वो शेख व सूफ़ी थे। इनकी बहुत सी करामतें और ख्वारिक आदात चीज़ें ज़बान ज़दे ख़ास व आम थी, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है यानी इनकी पैरवी की वजह से मैं इनका अज़ीज़ तरीन दोस्त था। इसी तरह मैं सैयदी सालेह साइह और सैयदी जिलानी वगैरह का पाबंद रहा, जो मुआसरीन में ख़ुद साहिब तरीक़त थे। चुनाचा मैं सैयदी शेख इस्माइल की मुलाकात का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। आखिर खुदा खुदा करके मेरी किस्मत का सितारा चमका और मुलाकात की घड़ी आ पहुँची। चुनाचा जब मैं अल शेख के घर में दाखिल हुआ तो बड़ी हिरसो हसरत से लोगों के चेहरों को पहचानने की कोशिश करता रहा। पूरी मजलिस मुरीदों से खचाखच भरी थी, जिसमें ऐसे ऐसे मशाइख भी थे जो बहुत ही सफ़ेद किस्म के लिबास पहने थे। मरासी में सलामो तहियत के बाद शेख इस्माइल ने कदूम मीमिनतुल ज़ोम फरमाया। इनके आते ही पूरा मजमा अदब व एहतराम से खड़ा हो गया। लोग इनके दस्ते मुबारक को बोसा देने लगे। वकील ने मुझे ठोका दिया और शेख साहब हैं, लेकिन मैंने ख़ास इश्तियाक का इजहार नहीं किया, क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी थी मैं इनके अलावा का मुंतज़िर था। मैंने तो शेख के मुरीदों और वकला से इनके मौजज़ात व करामात सुनकर एक अजीब व गरीब ख़याली तस्वीर बना ली थी, और शेख साहब की तस्वीर इससे कहीं मुख्तलिफ थी। इसलिए किसी इश्तियाक का इजहार ना करना मुताबिकत फितरत था। मैंने एक आधी किस्म के बूढ़े को देखा, जिसमें ना वक़ार है ना रोब व दबदबा। गुफ्तगू के दौरान वकील ने मुझे इनके सामने पेश किया। उन्होंने मरहबा कहकर अपने दाहिनी तरफ बिठा लिया। फिर मेरे लिए खाना लाया गया। खाने पीने के बाद दोबारा वकील ने शेख से मेरा तारुफ कराया ताकि अहद व पैमान लिया जा सके। इसके बाद लोग मुझसे गले मिलकर मुबारकबाद देने लगे और इनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग मेरे बारे में खासी मालूमात रखते हैं, और इसी खुशफहमी ने मुझ में ये जुर्रत पैदा कर दी कि सवाल करने वालों के जो जवाबात शेख दे रहे थे इन जवाबात पर एतराज़ करूं और अपनी राय को कुरान और सुन्नत से साबित करूं। लेकिन मेरे इस दखल दर माकूलात को बाज़ हजरात ने शिद्दत से नापसंद किया और हज़रतुल शेख की मौजूदगी में इसको बेअदबी समझा गया, क्योंकि वो लोग इस बात के आदि थे कि शेख की मौजूदगी में कोई भी शेख की इजाज़त के बग़ैर ज़बान नहीं खोल सकता। शेख ने हाजरीन की इस बदमजगी को महसूस कर लिया, लिहाजा बड़ी जहानत अफसरदगी के बादल को ये ऐलान करके दूर कर दिया कि जिसकी इब्तिदा महरिका यानी जलाने वाली होगी, इसकी इंतहा मशरिका यानी रोशन व ताबनाक होगी। हाजरीन ने समझा इस शेख की तरफ से लकब है और मेरे मुस्तकबिल के ताबनाक होने की ज़मानत है। बस फिर क्या था, सभी बतयब खातिर तबरीक व तहनीत पेश करने लगे, मगर शेखुल तरीक़ियत बहुत ही ज़हीन व तजर्बेकार थे, इसलिए बाज़ अरफा का क़िस्सा सुनाने लगे ताकि मैं फिर कहीं बेजा मदाखलत ना कर बैठूँ। कि इन बुज़ुर्गवार की मजलिस में बाज़ उल्मा भी आकर बैठ गए तो आरिफ ने कहा पहले जाकर गुसल करो। चुनाचा वो मौलाना गुसल करके आए और मजलिस में बैठना ही चाहते थे कि आरिफ ने कहा जाओ फिर से गुसल करके आओ। वो मौलाना दोबारा गुसल करने गए तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा गुसल किया है, सोच करके शायद पहले में कोई कमी रह गई हो। इसके बाद अगर मजलिस में बैठने लगे तो शेख आरिफ बिल्ला ने झिड़का और फरमाया फिर से गुसल करके आओ। मौलाना साहब रोने लगे और कहने लगे सैयदी मैंने अपने इल्मों अपने अमल के मुताबिक गुसल किया है, अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं मालूम बजूज इसके के खुदा आपके ज़रिए कुछ कशफ कर दे। इस वक्त आरिफ ने कहा अच्छा अब बैठो। मैं समझ गया कि इस किस्से से मैं ही मकसूद हूँ और मैं ही क्या, हाजरीन भी समझ गए। चुनाचा जब शेख इस्तराहत फरमाने के लिए चले गए तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे मलामत करने लगे कि जनाब शेख की मौजूदगी में इनका एहतराम और ख़ामोशी ज़रूरी है, वरना तुम्हारे सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। क्या तुमने कुरान का एक कौल नहीं पढ़ा, तर्जुमा है ए ईमानदारों बोलने में तुम अपनी आवाज़ें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना किया करो, और जिस तरह तुम आपस में ज़ोर से बोला करते हो इनके रूबरू ज़ोर से ना बोला करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब अकारत हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 2। मैंने अपनी हैसियत पहचान ली और फिर तमाम अवामिरो नसाए को पाबंदी से बजा लाने लगा और इस वजह से शेख ने मुझे अपने से और ज़्यादा करीब कर लिया। मैं इनके पास 3 दिन रहा। इस दौरान मैंने मुतअद्दिद सवालात भी किए, कुछ तो इम्तिहानन और कुछ इस्तेलामन। शेख इस बात को समझते थे और कह देते थे कुरान का ज़ाहिर और है बातिन, और कुरान के 7-7 बातिन हैं। खुदा ने इसके ख़जाने मेरे ऊपर खोल दिए और मखसूस चीज़ों पर मुझे मुतला कर दिया, और सालीनों आरफीन का सिलसिला सनद है और मुझसे अबुल हसन शाजली तक मुतसिल है। इनसे चंद औलिया के वास्ते से ये सिलसिला हज़रत अली करम अल्लाह वजह तक पहुँचता है। एक बात भूल ना जाऊँ, जो हलकात ज़िक्र कायम किए जाते हैं वो सब रूहानी होते थे, क्योंकि जलसे का आगाज़ शेख तिलावत कुरान मजीद से तजवीद के साथ करते थे। तिलावत के बाद किसी कसीदे का मतला पढ़ देते थे और फिर वो मुरीद हजरात जिनको कसाइदो अस्कार याद होते थे शेख के बाद पढ़ते थे। इन कसीदों में ज़्यादातर दुनिया की मजम्मत और आखरत की तरफ रगबत दिलाई जाती थी। इसमें जहद व रौ का तस्कीरा होता था। इसके बाद शेख की दाहिनी तरफ जो मुरीद बैठा होता था वो कुरान की तिलावत का इआदा करता था, और जब वो सदक अल्लाहुल अज़ीम कहता था तो शेख किसी नए कसीदे का मतला शुरू कर देते थे और फिर सब मिलकर इसको पढ़ते थे। इसी तरह नौबत ब नौबत तमाम हाजरीन पढ़ते थे, चाहे वो एक ही आयत पढ़ें, और फिर सबको हाल आने लगता था और झूमने लगते थे, एक एक शेर पर झूमते थे, और फिर शेख खड़े हो जाते थे, इनके साथ ही पूरा मजमा खड़ा हो जाता था और सब एक दायरे कुतुब में हो जाते थे, और इस दायरे का कुतुब शेख होते थे, और फिर सदर के नाम से इब्तिदा करके आह 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 कहना शुरू कर देते थे और शेख बीच में घूमते रहते थे। हर मर्तबा एक की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे और होते होते जब महफिल रंग पर आ जाती थी तो आशिकाना अशार ढोल पीट पीट कर पढ़े जाते थे और बाज़ों की वो उछल कूद शुरू हो जाती थी कि जैसे पागल है, और एक मुनज़्ज़म नगमे के साथ आवाज़ें बुलंद होने लगती थीं, और जब सब थक जाते थे तो फिर पहला जैसा सुकूत हुदूतारी हो जाता था, लेकिन ये सुकूत शेख के इख्तितामी कसीदे पर होता था, और फिर तमाम लोग शेख के सरों कंधों को बारी बारी बोसा देकर बैठ जाते थे। मैं भी बाज़ हलकात में शरीक हुआ हूँ, इनकी नकल तो मैंने की, लेकिन मैं इस पर मुतमईन नहीं था क्योंकि ये चीज़ मेरे इस अकीदे के ख़िलाफ़ थी जो बचपन से मेरे जहन में रासिख थी, यानी अदम शिर्क और अदम तौसल बग़ैर अल्लाह। चुनाचा मैं रोते रोते ज़मीन पर गिर पड़ा, मुतहैर था, और इन दोनों तनाक़ अकीदों में मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। यानी एक तरफ तो सूफियत का बहर ज़खार था जिसकी पूरी फ़िज़ा रूहानी थी, जिसमें इंसान की गहराइयों में खौफ ज़हद तकरुब इल्लाह का शऊर पैदा होता है, अलबत्ता ये खुदा के सालहे और आरिफ बंदों के वसातत से होता है, और दूसरी तरफ वहाबियत को ठाठे मारता हुआ समंदर है जिसकी पूरी फ़िज़ा में हर जगह कुफ्र ही कुफ्र है। जिसने ये बताया है कि ये सारी चीज़ें शिर्क हैं और खुदा शिर्क को कभी नहीं माफ़ करता, और जब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते और ना बारगाह एजदी में इनको वसीला बनाया जा सकता है, तो फिर इन औलिया व सालीहीन की क्या कदर व कीमत है। शेख की तरफ से ये जदीद मनसब पर फाइज हो जाने के बावजूद, क्योंकि शेख ने मुझे कफ्सा में अपना वकील बना दिया था, मैं अंदरूनी तौर पर कुलियतन मुतमईन नहीं था। अगरचे मैं कभी तो सूफियत की तरफ माइल हो जाता था और हमेशा इसका एहसास रहता था कि मैं सूफियत का एहतराम करता हूँ, औलिया अल्लाह और सालिहीन की हैबत मेरे रगो रेशे में समाई है, लेकिन फिर खुद ही तर्दीद कर देता था कि खुदा फरमाता है तर्जुमा है, और खुदा के सिवा किसी और माबूद की परस्तिश ना करना, इसके सिवा कोई काबिल परस्तिश नहीं। और जब कोई मुझसे कहता था खुदा का इरशाद है, ए ईमानदारों खुदा से डरते रहो और इसके तकर्रुब के ज़रिए और वसीले की जस्तजू में रहो, तो मैं फ़ौरन रद्द कर देता था कि वसीले से मुराद अमल सवाले हैं, जैसे कि सऊदी उलमा ने मुझे सिखाया था। खुलासे एक ही ज़माने में मुस्तरिब और परेशान फ़िक्र रहता था। कभी कभी मेरे घर बाज़ मुरीद हजरात आ जाते थे तो हम शब्बेदारी करते थे और अमारता कायम करते थे, यानी ब्रैकेट में लिखा है ऐसे हलका कायम करते थे जिसमें आशिकाना अशार के साथ इस्मुल सदर का ज़िक्र किया जाता था, ब्रैकेट क्लोज। शब्बेदारियों में हमारे हलकों से जो बेहंगम आवाज़ें निकलती थीं, इनसे हमसायों को अज़ियत होती थी, मगर वो अलीउल ऐलान हमसे इसका इजहार नहीं करते थे। अलबत्ता हमारी बीवी से अपनी औरतों के ज़रिए शिकायत करते थे। जब मुझे इन हालात का इल्म हुआ तो शरीक होने वाले लोगों से मैंने कहा, ये हलकात ज़िक्र आप में से किसी के घर हुआ करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं तकरीबन 3 माह के लिए मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ। ये कहकर मैंने मुरीदों से माजरत कर ली। इसके बाद अहलो अयाल अकारीब रिश्तेदारों को खुदाफिस कहकर अपने खुदा पर भरोसा करके निकल खड़ा हुआ। ला उशरिक भी शैअन।